नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों की मतगणना कल। तेल विपणन कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 69.50 रूपये प्रति यूनिट की कटौती की। विमान ईंधन की कीमत भी 6.5% घटी। और पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्वीकार किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उसका आधिकारिक क्षेत्र नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्र है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, भाजपा के ही अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद तथा कंगना रानौत, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी तथा विक्रमादित्य सिंह, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी शामिल है। आज ही ओडिशा विधानसभा की शेष 42 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 6 और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के इस चरण में दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 49%, झारखंड में लगभग 47%, पश्चिम बंगाल में 45% से अधिक और चंडीगढ़ में 40% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में 39% से अधिक, पंजाब तथा ओडिशा में लगभग 38% और बिहार में लगभग 36% मतदान की खबर है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में लगभग 38% मतदान दर्ज किया गया है। झारखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा की 3 सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। इन क्षेत्रों के 53,24,000 से अधिक मतदाता, 8 महिलाओं सहित 52 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भीषण गर्मी से बचाव के लिए प्रत्येक केंद्र पर अनेक प्रबंध किए गए हैं। पंजाब में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के उल्लंघन के लिए फिरोजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह कंबोज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गुरु हर सहाय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जीवा अरय गांव में वोट डालते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ये FIR दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद सुरेंद्र कंबोज और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सवेरे 6 बजे शुरू होगी। पहले डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गई पोस्टल बैलेट सिस्टम के वोटों की गिनती होगी। अरुणाचल प्रदेश में मतगणना के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए 2000 से अधिक चुनाव अधिकारी तैनात रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के 60 सदस्यों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। इन विधानसभाओं का कार्यकाल कल यानी 2 जून को समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और रेमल चक्रवात के बाद लगातार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से 11 जिलों में लगभग 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्यभर में बाढ़ के कारण 25 राजस्व मंडलों के कुल 560 गांव प्रभावित हुए हैं और 4,900 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। कछार में 3, हैलाकांडी में 2 और पश्चिम कार्बी अंगलोंग जिलों में 1 व्यक्ति की मौत हुई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कछार, करीमगंज और नौगांव सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 138 राहत शिविर और 39 राहत वितरण केंद्र खोले हैं और बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। कोपिली, बराक, कटाखल और खुशियारा नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। तेल विपणन कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 69.50 रुपये की कटौती की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया कि दिल्ली में अब प्रति व्यावसायिक सिलेंडर का मूल्य 1676 रुपये होगा। ये सिलेंडर अब कोलकाता में 72 रुपये, मुंबई में 69.50 रुपये और चेन्नई में 70.50 रुपये सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा विमान ईंधन ETF की कीमतों में भी 6.5% की कमी की गई है। सरकार ने कहा है कि बिजली की अत्यधिक मांग के बावजूद ताप बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 45 मीट्रिक टन से अधिक बना हुआ है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया है कि ये स्टॉक 19 दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मंत्रालय ने बताया है कि मई में ताप बिजली संयंत्रों में औसत दैनिक कमी केवल 10,000 टन प्रतिदिन थी। पिछले वर्ष कोयला उत्पादन में 8% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। खदान के पीट हेड पर स्टॉक 100 मीट्रिक टन से अधिक है। इससे बिजली क्षेत्र को पर्याप्त कोयला मिलता है। मंत्रालय ने मॉनसून के दौरान ताप बिजली संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है और कहा है कि 1 जुलाई को ताप बिजली संयंत्रों के पास 42 मीट्रिक टन से अधिक कोयला उपलब्ध रहने की उम्मीद है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर विदेशी क्षेत्र है। पाकिस्तान के अपर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कश्मीरी शायर और पत्रकार अहमद फरहद शाह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस हिरासत में है और उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र विदेशी भूमि है जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अदालत में शाह की पत्नी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। श्री शाह का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने रावलपिंडी में उनके आवास से अपहरण कर लिया था। श्री शाह पिछले 2 हफ्तों से लापता है और हाल ही में पता चला है कि पुलिस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि यदि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर विदेशी क्षेत्र है और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो पाकिस्तान सेना और पाकिस्तानी रेंजर वहां किस तरह पहुंचे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने लोगों का जबरन अपहरण करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की आलोचना की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में जारी भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और झारखंड में आज गर्मी की स्थिति जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी भागों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पूर्वी भागों तथा पश्चिम बंगाल में अगले 6 दिनों के भीतर मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों में ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत में केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 6 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। देश के उत्तरी भाग में अगले 5 दिनों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल सेमीफाइनल में आज त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। दुनिया की 3रे नंबर की भारतीय जोड़ी को जापान मत्स्यू यामा और चिचारू शीदा से 23-21, 21-11 की जोड़ी ने हराया। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में दुनिया की 6रे नंबर की किम सो योंग और कोंग ही योंग की कोरियाई जोड़ी को हराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार और पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।